أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ اس کتاب کا چھٹا چیپٹر ہے. اس کتاب کا نام ہے میرا طبیب کہاں ہے, اور اس چیپٹر کا نام ہے کہ آپ کی روح کی کیا صورت ہے یا آپ کے روح کی کیا شکل ہے. جیسے ہی بیل گاڑی اس گاؤں میں داخل ہوئی تو اس عورت کی بہت زور سے چلانے کی آواز ہوا میں گونجنے لگی, لیکن کوئی مددگار نہیں تھا. نہ اس لیے کیونکہ اس گاؤں کے لوگ سنگ دل اور بے رحم تھے, بلکہ اس لیے کیونکہ اس گاؤں کے حصے میں اب کوئی نہیں رہتا تھا. پھر یہ بیل گاڑی آہستہ آہستہ ایک ٹوٹے گھر کے سامنے رک گئی. پھر یہ عورت اور یہ خاتون بڑی مشکل سے اس بیل گاڑی سے اتر کر اس ٹوٹے گھر میں چلی گئی. پھر بہت مشکل سے, بہت درد برداشت کرنے کے بعد آخرکار بچے کے کلکاریوں کی آواز گھر میں گونجنے لگی. لیکن اس خاتون کے لیے بہت سرپرائزنگ بات تھی, اچنبے والی بات تھی کہ یہ ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ چار بچے تھے. وہ جانتی تھی کہ اس کے رحم میں ایک سے زیادہ بچہ ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چار بچے ہوں گے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بچے بڑے ہوتے گئے, اور ہر بچے کی ایک خاصیت تھی. ان میں سے ایک لڑکا بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار تھا, جو ہر چیز کو, ہر انفارمیشن کو اپنے عقل کے ترازو میں تولتا تھا اور پھر نتیجہ لیتا تھا, اور اس کے نتیجوں کو سب مانتے تھے. اور دوسرا لڑکا تھا جو دن میں خواب دیکھتا تھا. وہ اجدہوں کے, بڑے بڑے قلعوں کے, اڑنے والے پہاڑوں کے, جادوئی مطالب کے, پریوں کے, اور ایسے لوگوں کی جن کے پاس جادوئی طاقتیں ہوتی تھی, ان کے سپنے دیکھتا تھا. اس کے سارے ڈیسیشنز اسی خیالی دنیا کے حساب سے ہوتے تھے, لیکن کوئی انسان اس کے ڈیسیشنز کو نہیں مانتا تھا, بلکہ کوئی اس سے پوچھنے کے لیے, مشورت کرنے کے لیے, گائیڈنس لینے کے لیے آتا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے پاس ایک جادوئی قدرت تھی. وہ قدرت یہ تھی کہ یہ اپنے الفاظ کا کھیل کھیلتا تھا. وہ اپنی باتوں اور خیالوں کو اتنی خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا کہ لوگ اس کی باتیں سنتے سنتے تھکتے نہیں تھے. وہ گھنٹوں بیٹھے اس کی باتیں سنتے تھے, بلکہ وہ اپنی دنیا کی اصلی حقیقت کو بھول جاتے تھے اور اس کی باتیں سننے میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ یہ بھول جاتے تھے کہ وہ بھوکے ہیں. وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ان کی دکانیں ہیں, کار کا کسب و کار ہے, کام کاج ہے, بلکہ وہ یہ بھی بھول جاتے تھے کہ ان کی ایک فیملی ہے جس کا انہیں خیال رکھنا ہے. کبھی کبھی وہ سٹوریز میں اور اس کی باتوں میں اتنا الجھ جاتے تھے اور اتنا انوالو ہو جاتے تھے کہ انہیں لگنے لگتا تھا کہ یہی ان کی اصلی زندگی ہے, اور وہ جو زندگی جس میں ان کا کام کاج, کسب و کار اور خانوادہ ہے, یہ زندگی ان کے آڑے آ رہی ہے تاکہ یہ کہانی والی اور قصوں والی زندگی یہ انجوائے کر سکے. پھر ان میں سے ایک بہت ہی لالچی شخص تھا. اس کا دل کسی چیز سے نہیں بھرتا تھا. اسے ہر چیز بہت زیادہ چاہیے تھی. اسے کھانا زیادہ چاہیے تھا, اسے کپڑے زیادہ چاہیے تھے, اسے زمین زیادہ چاہیے تھی, اسے پیسے زیادہ چاہیے تھے, اسے قدرت زیادہ چاہیے تھے, اسے ہر چیز زیادہ چاہیے تھی. اگر اس کا بس چلتا تو اسے زیادہ بھی زیادہ چاہیے تھا. اور ان میں سے جو آخری تھا وہ بہت ہی یونیک اور الگ تھا. اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی, اسے کوئی عقلی دلیل سمجھ نہیں آتی تھی. بس یہ مانتا تھا کہ ہر مشکل کو مکے سے اور گھونسے سے سلجھایا جا سکتا تھا. اسے لگتا تھا کہ ہر چیز قدرت سے سلجھائی جا سکتی ہے. تو یہ پہلے مارتا تھا پھر بات کرتا تھا. اگر کوئی اسے صبح صبح کہتا گڈ مارننگ, تو یہ اسے پہلے مکہ مارتا اور پھر کہتا ہاں ہاں اب میرے لیے گڈ مارننگ ہو گئی. تو سادے الفاظ میں بتاؤں کہ اسے عقل کچھ نہیں تھی, بس قدرت ہی قدرت تھی. جیسے جیسے سال گزرتے گئے یہ بڑے ہوتے گئے, اور پھر یہ اپنے لیے کسب و کار ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. جب یہ ایک دیش سے گزر رہے تھے, ایک کنٹری سے گزر رہے تھے, تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں کا جو راجہ ہے, انہیں ایک وزیر کی ضرورت ہے. ایسے وزیر جو اسے حکومت کرنے میں مدد کر سکے. تو کیونکہ ان چاروں کے پاس الگ الگ قابلیت اور قدرت تھی, تو انہوں نے کہا چلو کیوں نہیں راجہ کے پاس جاتے ہیں, اسے اپنی قابلیت دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاید ہم چار میں سے کوئی اس کا وزیر بن جائے. تو پہلا والا راجہ کے سامنے آتا ہے, اور یہ وہی سب سے زیادہ قدرت اور زیرو عقل والا شخص تھا. اس نے کہا हुजूर आला, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन वजीर बनूंगा, क्योंकि आपका राज्य बहुत बड़ा और ख़जानों से भरा हुआ है और ऐसे राज्य की रक्षा करना और प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके राज्य के लिए ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाऊंगा जिसे कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कि आपके राज्य की तरफ या आपकी ज़मीन की तरफ आंख उठाकर भी देखे, कोई ख्वाब में भी आपके राज्य पे और आपके किंगडम पर हमला करने का नहीं सोचेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि हम दाखिली और हमारे देश के अंदर के भी इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे कि अंदर से भी आपकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं रहेगा। हुजूर आला, हर सर जो उठेगा उसे झुका दिया जाएगा, हर उंगली जो उठेगी उसे काट दिया जाएगा और हर आवाज़ जो उठेगी उसे दबा दिया जाएगा। आप पूरी कुदरत के साथ हुकूमत करेंगे और सालों साल तक आपकी हुकूमत टिकी रहेगी। राजा को उसकी बातें अच्छी लगी, लेकिन उसे लगा कहीं ना कहीं ये बहुत गुस्साला इंसान है और ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर सिर्फ जोश भरा हुआ है, अक्ल नहीं। तो राजा ने सोचा क्यों ना दूसरों को भी मौका दिया जाए और उनकी बातें भी सुनी जाए। अगला शख्स जो आया वो वही लालची लड़का था। उसने कहा, हुजूर आला, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन वज़ीर बनूंगा, क्योंकि आपका राज बहुत बड़ा और बहुत ही पैसे वाला है, लेकिन फिर भी कई ऐसी ज़मीनें बाकी है जिन पर कब्ज़ा करना बाकी है, कई ऐसे ख़जाने हैं इस दुनिया में जिन पर कब्ज़ा करना बाकी है। हमारा शाही ख़जाना ऐसा ख़जाना होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम हमारी आर्मीज़ लेकर हमारे पड़ोसी देशों में जाएंगे और उन पर कब्ज़ा कर लेंगे, हम बल्कि दूर दूर की ज़मीनों पे और दूर दूर के राज्यों पे कब्ज़ा कर लेंगे और दुनिया के हर कोने से ख़जाना जमा कर हम आपके शाही ख़जाने में भर देंगे। अब राजा को एक नई रानी की भी ज़रूरत है और मैं जानता हूँ दकीकन आपको कहाँ वो बेहतरीन रानी मिलेगी। हुजूर आला, आप तो अपनी आवाम के साथ भी बहुत ज़्यादा लीनियंट है और आप इनके साथ बहुत नर्म रफ्तार करते हैं। मेरे हिसाब से इनका टैक्स बढ़ा देना चाहिए और ये टैक्स के पैसों से हमें और एक महल बनाने की ज़रूरत है। फिर आप इस दुनिया के ऐसे राजा बन जाएंगे, ऐसे बादशाह बन जाएंगे जिसकी मिसाल ना होगी, और मैं आपका ऐसा वज़ीर बन जाऊंगा जिसकी मिसाल ना होगी। राजा ने उसकी बातें सुनी। फिर इसके बाद तीसरा शख्स वो आया जो दिन में ख्वाब देखा करता था, अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। उसने कहा, हुजूर आला, बस आपकी खोज ख़त्म हुई, बस आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, बस आपकी जितनी ज़रूरतें हैं वो ये हकीर बंदा पूरा कर देगा, ये हकीर बंदा आपकी अजीम और शान खिदमत में हाजिर है। मेरे आका, अगर मैं आपका वज़ीर बनूंगा तो आपके बादशाही की बातें हज़ारों साल तक चलेगी, आपकी हुकूमत की बातें हिस्ट्री में लिखी जाएगी, लिखा जाएगा कि आप किस तरह दिलदार राजा थे और आपकी हुकूमत की कोई बाउंड्री नहीं थी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आप ही की हुकूमत थी, कभी आपकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था। ये ऐसी हुकूमत बन जाएगी जहाँ पर लोग अपने सपने पूरे करेंगे, दुनिया के हर कोने से लोग आएंगे यहाँ पर ताकि उनकी सपने और उनके ख्वाहिशात पूरे हो सके। आपके शाही महल में हर तरह के लोग मौजूद होंगे, बड़े बड़े खानसामा होंगे, बड़े बड़े शायर होंगे, बड़े बड़े पेंटर्स होंगे जो ऐसी पेंटिंग करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आपके महल में सोने और जवाहरात पानी की तरह बहेंगे, लोग आपकी दिलदारी के सामने अपना सर झुकाएंगे और लोग आपकी हुकूमत पर और आपकी राजाशाही पर कस्में खाएंगे। शायर आपके बारे में लिखते लिखते नहीं थकेंगे, कहेंगे कि आपकी हुकूमत इस दुनिया में जन्नत के बराबर है और आप इस ज़मीन के खुदा होंगे। हुजूर आला, बस और ना ढूंढे, अब वक्त आ गया है कि आप अपने ख्वाबों को और अपनी आवाम के ख्वाबों को पूरा करें। जब बादशाह ने इसकी बातें सुनी तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, बस इसके दिल में ये बात आई गई थी कि इसे मैं अपना वज़ीर बना लूँगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये जो चौथा शख्स है इसे भी एक मौका देकर देखता हूँ, शायद इसके पास भी कोई माकूल बात होगी या कोई अक्लमंदी की बात कर ले। जैसे ही चौथा शख्स अपनी बातें शुरू करने वाला था, तब तक वो दो दूसरे शख्स इस ख्वाबो ख्याल वाले शख्स से कहते हैं कि भाई तुमने तो जाकर इतनी सारी बातें बता दी कि हम हमारा राज बड़ा करेंगे, हम पैसे लाएंगे, हम ज़मीन हड़पेंगे, ये सब तुम कैसे कर पाओगे। तो वो कहता है तुम दोनों की मदद से, हम तीनों जब मिल जाएंगे और पार्टनर बन जाएंगे तो हम तीनों मिलकर हुकूमत करेंगे। फिर ये जो स्मार्ट शख्स था इसने अपनी बातें शुरू की। उसने कहा हुजूर आला जिल्ले इलाही, हमें यहाँ होशो हवास से काम लेने की ज़रूरत है, आपके राज्य को एक वज़ीर की ज़रूरत है, ना कोई मामूली वज़ीर लेकिन ऐसा वज़ीर जो आपकी ज़रूरत है, आपकी आवाम की ज़रूरत है और ये पूरे राज्य की ज़रूरतों को समझ सके और सिचुएशन को एनालाइज करके सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ये सही है कि एक बादशाह को अपने ख़जानों की हिफाजत करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी कौम पे जुल्म करे और उनसे भारी भरकम टैक्स जमा करे और उन्हें मुसीबत में डाल दे। हुजूर आला, अम से बेहतर कोई चीज़ नहीं, पीस सबसे बेहतरीन चीज़ है। सही है कि हमें हमारा देश बड़ा और राज्य बड़ा करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे राज्यों पर हमला करेंगे और दूसरे राज्यों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये हो सकता है कि हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक अमन का पैमान बांधे। इस बहाने दोस्ती भी बढ़ेगी और इंटरनल इकोनॉमी भी बढ़ेगी और फिर साथ में इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। ख़ुद जंग का बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है और इससे ज़्यादा ये कि लोग ज़िंदगी से थक जाते हैं और इसके बाद इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर यह अक्लमंद शख्स राजा को बताता गया कि किस तरह राज्य और बादशाही में आई हुई मुश्किलों को रैशनल और अकली तरीके से हल किया जा सकता है और कैसे सही और माकूल नतीजों पर पहुंचा जा सकता है। तब ये सारी बातें सुनकर राजा ने अपना डिसीशन ले लिया था कि बस मैं इसी अक्लमंद इंसान को मेरा वज़ीर बना दूंगा। बस वो अपना हुक्म ऐलान करने ही वाला था तब तक उन तीनों में से एक ने कहा मेरे आका क्यों ना आप इस बारे में आज रात अच्छे से सोचें और फिर कल आप आकर अपने नतायज को ऐलान करें कि हम चारों में से आपने किसको अपना वज़ीर बनाया है। राजा ने जब इस बात से सहमति दिखाई तो फौरन पलटकर अपने दो भाइयों से कहने लगता है कि देखो कुछ भी हो जाए ये अक्लमंद वज़ीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये वज़ीर बन जाता है तो हमारे लिए फिर इस राज्य में कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। बस यहाँ से जंग शुरू हुई अक्ल, शहवत, गज़ब और वहम की। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इन चारों अफराद में से अक्ल कौन था, शहवत कौन था, गज़ब कौन था और वहम कौन। हमारी रूह भी बिल्कुल इसी तरह है, हमारी रूह हमारे बदन की बादशाही करती है। और अब सवाल ये है कि इस बादशाहियत में इसका वज़ीर कौन बनता है, शहवत, गज़ब, वहम या फिर अक्ल। अगर शहवत, गज़ब और वहम हमारी रूह के वज़ीर बन जाते हैं तो फिर हमारी रूह की हालत नफ्स अम्मारा जैसी हो जाती है, जो सिर्फ अपनी हैवानी ख्वाहिशों को पूरी करने में लग जाता है और दूसरों के बारे में कोई ख्याल नहीं करता। और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि अगर शहवत, गज़ब और वहम इन तीनों में से कोई भी एक वज़ीर की पोस्ट ले लेता है, वज़ीर की जगह ले लेता है, तो फिर ये पूरी कोशिश करता है कि बाकी दो के साथ मिलकर अक्ल को नाकारा कर दे। लेकिन वही अगर अक्ल वज़ीर बन जाता है तो फिर अक्ल शहवत, गज़ब और वहम को हिदायत करता है और उनको अपने ज़ीर दस्ती में काम पर लगाता है, यानि अब अक्ल हुकूमत करती है और शहवत, गज़ब और वहम अक्ल की फरमा बरदारी करते हैं। और यही सही तरीक़ा है कि अक्ल हुकूमत करे और शहवत, गज़ब और वहम अक्ल की फरमा बरदारी करें। जब अक्ल हुकूमत करती है तो हमारी रूह एक नए स्टेट में चले जाती है और इस स्टेट को कहते हैं नफ्स लवामा। यानि जब शहवत, गज़ब और वहम हुकूमत करते हैं तो हमारी नफ्स नफ्स अम्मारा की हालत में होती है, लेकिन जब अक्ल हुकूमत करती है तो फिर हमारी नफ्स नफ्स लवामा वाली हालत में पहुँच जाती है। और फिर कई साल तक जब अक्ल हुकूमत करती है और हमारी रूह को तज़किए की तरफ और माकूल और रैशनल तरीक़ों से आगे बढ़ाती है, तब जाकर हमारी रूह एक नए लेवल में पहुंचती है और इस लेवल का नाम होता है मुतमईन्ना, जिसके लिए कुरान में सूरह फज्र में आयत 27 और 28 यानी चैप्टर 89 वर्स 27 एंड 28 में आपको मिलेगी ये आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, यानि ए नफ्स मुतमईना अपने परवरदिगार की तरफ राजी हालत में पलट कर आ जा। अगर वहम हमारी रूह की हुकूमत करता है तो फिर वो हमें ख्यालों में और ख्वाबों में मशगूल कर देता है, और अगर लालच हमारी रूह पे कब्ज़ा कर लेती है तो फिर हम हमारी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने में, बड़ा घर लेने में, बेहतर पोजीशन मिलने में, बड़ी कंपनियों के लिए काम करने में और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने की चक्कर में बिज़ी हो जाते हैं। और अगर ग़ज़ब हमारी रूह पर कब्ज़ा कर लेता है तो फिर हम बहुत ही मुतकब्बिर और बेझिझक और ज़ालिम हो जाते हैं हमारे डिसीशंस लेने में, और दूसरों की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं होती है और हम दूसरों का ख्याल भी नहीं रखते। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब अक्ल हमारी हुकूमत करने लगती है तो फिर क्या होता है। हमारे उलमाओं ने बताया है कि जब अक्ल हमारी रूह की हुकूमत करने लगती है तो फिर सारे इम्पॉर्टेंट डिसीशंस और प्राइमरी डिसीशंस अक्ल लेता है, और अक्ल अपने डिसीशंस लेने में वहम, गज़ब और शहवत को काम पर लगाता है। यानि अगर अक्ल वज़ीर बन जाता है तो फिर गज़ब, वहम और शहवत इसकी बातें सुनते हैं और इसकी फरमाबरदारी करते हैं। वैसे ये बात बताते चलूं कि ये तीनों एक साथ मिलकर रहते हैं और हमेशा अक्ल के खिलाफ जंग कर रहे होते हैं, और अगर अक्ल हुकूमत करती है तो ये तीनों को काम पर लगाती है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब अक्ल इन तीनों को काम पर लगाती है तो इन्हें इफरात और तफरीत नहीं करने देती, बल्कि इन्हें तआदुल और बैलेंस पर मेंटेन करती है। यानी ये एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं कर सकते, इन्हें बैलेंस्ड बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता है। मिसाल के लिए, अगर गज़ब अपने बैलेंस से बाहर हो जाता है तो फिर ये वहशी बन जाता है या फिर बहुत ही डरपोक, लेकिन अगर गज़ब को बैलेंस पर मेंटेन किया जाता है तो ये बहुत ही शुजा बन जाता है। इसी तरह अक्ल, ये तीनों फैकल्टीज़, ये तीनों कुवाएँ जो इंसान के अंदर है, गज़ब, शहवत और वहम, इनको बिल्कुल बैलेंस पर मेंटेन करता है। इसलिए गज़ब जब बैलेंस पर होता है तो ये शुजात होती है, और शहवत जब बैलेंस पर होती है तो ये इफ़त होती है, और वहम जब बैलेंस पर होता है तो अदल होता है, और फिर अक्ल इन तीनों चीज़ों को बैलेंस पर मेंटेन करके हिकमत की तरफ बढ़ती है, और अक्ल को हिकमत हासिल होती है। सूरह तगाबुन की 16वीं आयत में खुदावंद मुताल कहता है, और जहाँ तक हो सके अल्लाह की नाफरमानी से डरो और सुनो और इताअत करो और माल खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स अपने नफ्स के बुख़ल से बचाया गया वही लोग फलाह पाने वाले हैं। बस तो जान लीजिए कि अगर हम हमारी रूह को गज़ब, शहवत या वहम के हवाले कर देंगे तो फिर हम फलाह पाने वाले लोगों में से नहीं रहेंगे, बल्कि हम हमारे नफ्स अम्मारा के ग़ुलाम बन जाएंगे, और दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए नाकामयाबी और रुसवाई होगी। लेकिन अगर अक्ल हमारी रूह की हुकूमत करेगी तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और फलाह हासिल होगी। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में, ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद 12 मुहर्रम के बाद हम नई किताब शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उस किताब के डिटेल्स जो अटैच्ड पोस्टर है इसमें आपको मिलेंगे। उस बुक के लिए भी कोशिश करेंगे कि तमाम मतालिब को इंग्लिश के अलावा उर्दू में रिकॉर्डिंग करके भेजें इंशाल्लाह। अगला चैप्टर आखिरी चैप्टर होगा इस किताब का। तब तक के लिए इल्तिमास-ए-दुआ, खुदा हाफिज़।